الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله اللہ کے پیارے حبیب حبیب لبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو کہ مجھ پر ایک بار درود پڑھتا ہے اللہ پاک اس پر 10 رحمت نازل فرماتا ہے، اس کے 10 گناہوں کو معاف فرماتا ہے اور اس کے 10 درجات بلند فرماتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایک نوجوان کو 3 ماہ کی تنخواہ ملی، بڑا خوش تھا اور خوشی خوشی گھر جاتا ہے۔ گھر پہ اطلاع دے دی تھی کہ مجھے 3 مہینے کے پیسے ملے ہیں، 1 دن کی چھٹی ملی ہے، میں بڑا خوش ہوں۔ جاتے ہی اس نے اپنے امی کے ہاتھ میں اپنی پوری تنخواہ، جو جو اس کو پیسے ملے تھے، سارے امی جان کو دے دیے۔ امی بھی بڑی خوش ہوئی۔ امی جان نے کہا کہ بیٹا اس میں سے اتنا حصہ نکال کر آگے ایک علاقے میں غریب گھرانہ ہے، جا کر بیٹا انہیں راشن وغیرہ دیا تاکہ ان کی بھی ضرورت پوری ہو۔ اللہ نے ہمیں اتنا دیا ماشاءاللہ، خوشی کا لمحہ ہے، خوشی کی گھڑیاں ہیں۔ بیٹے نے کہا جی امی جان۔ وہ گیا بازار میں، راشن وغیرہ جو کچھ کھانے پینے کا سامان تھا لے کر آ گئے۔ اب گھر جب واپس آئے تو ڈیفینیٹلی گھر میں بھی ایک خوشی تھی اور پکا ہوا تھا، خوب دعوت وغیرہ ہوئی۔ نوجوان کہتا ہے میں تھکا ہوا بھی تھا، کھانا وانا بھی کھا لیا تھا، سردی بہت تھی۔ جیسی سویا تو مجھے وہ امی کی بات یاد آ گئی کہ بیٹا وہ ایک غریب گھرانہ ہے، اس کی مدد کرنی ہے۔ میں بولوں جاؤں، پھر کہ یار کل چلا جاؤں گا، میں بھی جاؤں، میں کہ کل چلا جاؤں گا۔ یوں بس اسی کشمکش میں تھا، کیا کروں، اب لحاف میں چلا گیا تھا، سردی بھی تھی، نکلنے کا دل بھی نہیں کر رہا تھا۔ خیر ہم نے خوب دعوت کھائی ہے، کھانا کھایا ہے عمدہ عمدہ، پتہ نہیں وہ بیچارہ غریب گھرانہ کتنی پریشانی میں ہوگا، چلو جاتے ہیں اس کی مدد کرتے ہیں۔ کہا میں اٹھا اور جو سامان خریدا تھا وہ میں نے اپنے کندھے پر اٹھایا اور چل پڑا۔ راستے پر سوچتا رہا کیسے ہوگا، کیا ہوگا، کیا گھر ہوگا، کیا گھرانہ ہوگا۔ خیر کچھ دیر کے بعد میں گھر کے باہر پہنچا، دروازہ بجایا تو ایک چھوٹی سی 4-5 سال کی بچی نے میرا دروازہ کھولا۔ میں اس بچی پر بھوک کے، غربت کے، پریشانی کے، تکلیف کے آثار دیکھتا رہ گیا۔ پتلے سے کوئی کپڑے پہنے تھے، سردی سے بدن ڈھانپنے کے لیے کوئی پروپر انتظام نہیں تھا، حالانکہ کڑاکے کی سردی تھی۔ تھوڑی نیچے نظر پڑی تو اس کے پاؤں میں جوتیاں تک نہیں تھی، اتنا غریب 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 گھرانہ تھا۔ میں تو دیکھتے میری آنکھوں سے آنسو نکل گئے۔ بچی نے اندر تو جواب نہیں دیا، مجھ سے پوچھا کہ آپ کے ہاتھ میں کیا ہے، کھانا ہے؟ میرے ہاتھ سے بورا نیچے رہ گیا تو میں نے کہا ہاں بیٹا میں کھانے کا سامان لایا ہوں۔ امی امی امی، وہ فرشتہ آ گیا۔ وہ آدمی ہکا بکا رہ گیا، بولا میں گناہگار بدکار سیاہکار آدمی، مجھے فرشتہ بنا دیا؟ یعنی یہاں فرشتہ فرشتہ صفت انسان ہوتا ہے نا، نیک، ہم نے یار فرشتہ صفت انسان ہے، نیک آدمی ہے، اچھا آدمی ہے۔ اندر سے اس کی امی کی آواز آئی جو پردے میں تھی، کہا بیٹا وہ اصل بات یہ ہے کہ ان کے والد صاحب ایک مزدور آدمی تھے، انتقال کر گئے تھے، اور میں مطلب کہ کچھ بھی کر کرا کر گزارا کرتی رہی، لیکن اب اس کے بعد یہ بھی مشکل تھا کہ میں کوئی محنت مزدوری کر سکوں، ہاتھ میں پھیلا نہیں سکتی تھی، میری خودداری اس بات کی اجازت نہیں دیتی۔ کوئی نہ کوئی آتا تھا اور آس پڑوس اور محلے کے لوگ آ کر کبھی نہ کہیں کوئی سی مدد کر دیتے تھے، پڑوس رشتہ دار وغیرہ، خاندان وغیرہ، تو ہمارا گزارا ہو جاتا تھا۔ 2 دن سے بیٹا کوئی कुछ आया नहीं तो मेरे बच्चे 2 दिन से भूखे थे, और मैं अपने बच्चों को तसल्ली देती थी, बच्चे कहते अम्मी भूख लगी है, मैं कहता बेटा कोई फरिश्ता आएगा और हमारी मदद कर जाएगा, अल्लाह किसी फरिश्ते को भेजेगा, अल्लाह किसी फरिश्ते को भेजेगा। तो यूं बेटा तुम खाना लेकर आ गए तो मेरी बच्ची को ऐसा लगा कि फरिश्ता आ गया, तो यूं ऐसा हो गया। मैंने सामान वगैरह दिया और मैं जब वापस पलटा तो बस अब मेरी आंखें भीग रही थी कि इतना गरीब घराना भी माशरे में होता है, इतने गरीब लोग भी माशरे में होते हैं। उस औरत ने अपने रब का शुक्र अदा किया, बहुत शुक्र अदा किया कि मैं अपने रब का शुक्र अदा करती हूँ, और मेरा भी इससे शुक्रिया अदा किया। मेरे से कदम उठ नहीं रहे थे, मैं उस गरीब घराने की सूरत हाल देख कर कि मुझे एहसास हुआ कि कुछ घर ऐसे होते हैं कि जिनकी 2 वक्त की रोटी जो है ना, यानी 2 रोटियां उनकी कुल कायनात बन जाती है। प्यारे इस्लामी भाइयों, ये वाकया हो सकता है कि दुरुस्त हो सकता है दुरुस्त ना भी हो, किताबों में लिखा गया है, लेकिन बात यह है कि गरीब से गरीब घर हमारे यहां पाए जाते हैं। वो बसा औकात ऐसा होता है कि किसी एक गरीब की मदद इंसान को कहां के कहां पहुंचा देती है। एक शख्स को ख्वाब आया कि फलां को उमरा करा दो, इसका ये नंबर है, इसका ये नाम है। वो शख्स उठा, उसको बोला यार अब ये क्या, उसने ख्वाब को अहमियत नहीं दी। दूसरी रात तो ये ख्वाब आया कि फलां को उमरा करा दो, ये इसका नाम है, ये इसका नंबर है, उसे फिर इंपॉर्टेंस नहीं दी। तीसरी रात फिर ख्वाब आया कि फलां को उमरा करा दो, इसका ये नाम है, इसका नंबर है। अब ये उठकर मस्जिद में अपने इमाम साहब के पास गए कि इमाम साहब ये तीसरी रात ऐसे ही ख्वाब आया है, अब तो नंबर भी याद हो गया, अब तो बंदा भी नाम भी याद हो गया, क्या करूं। इमाम साहब ने कहा अच्छा ख्वाब है, पूरा करना चाहिए, अब रब्ता तो करें, है कौन। तो वो कह रहे मैंने फोन किया, सामने से एक शख्स ने फोन उठाया, मैंने कहा ये नंबर है, कहा हाँ, बोला फला नाम वाला, हाँ जो मुझे ख्वाब में नाम नंबर दिया वही शख्स ने फोन उठाया। मैंने इसको कहा कि मुझे आपको उमरा कराना है, वो तो कहने लगा भाई कौन हो, मुझे जानते नहीं पहचानते नहीं ना, मैं तुम्हें जानता हूँ पहचानता हूँ, उमरा कराना है आप मुझे, आप उमरा कराना है, नहीं भाई तो मुझे जानते नहीं हो कि वो हूं कौन, कभी देखा है मुझे, का देखा नहीं है, लेकिन बस मैं आपको उमरा कराना चाहता हूँ। अब वो सामने कह रहा है कि कौन हो भाई, क्यों उमरा कराना चाहते हो, क्या आप हाँ तो कह दें, मक्के मदीने लेके जाना है ना आपको, तो उमरा कराने लेके जाना है, आने जाने का खर्चा मेरा, ले आऊंगा सब मेरे को, आओ हाँ कह दो। अच्छा चलो भली बात है, आओ ले जाओ, ये मेरा एड्रेस है। वो एड्रेस पर पहुंच गया सारा इंतजाम करके, और उसको देखा तो वाकई देखता रह गया, क्या यार इसके लिए ख्वाब आया था, यानी वो आदमी दूर दूर तक उसका कोई दीनदारी का या कोई ऐसा मतलब कोई नमाजी होगा या कोई ऐसा होगा, कोई अता पता नहीं था, बिल्कुल मतलब अमल से दूर, दीन से दूर, फुल दुनियादार जिसको आप बोलते हैं, मगर उसको वो उमरा कराना था। खैर उसको उमरे पर ले गया, उमरा हुआ, तवाफ हुआ, सब कुछ फारिग हो गया। फारिग होने के बाद जैसे ही मस्जिदुल हराम से बाहर निकलने लगे तो उसने कहा कि भाई तुम मुझे ले तो आयो, अब पता नहीं जिंदगी में कभी काबा देखना मक्का देखना नसीब होगा या नहीं होगा, अगर तुम कहो तो मैं 2 रकअत नफल पढ़ लूं जाते जाते। हाँ पढ़ लो, अच्छी बात है, भली बात है। अब वो अंदर गया नफल पढ़ने के लिए, बाहर ही नहीं आए, बाहर ही नहीं आए, बाहर ही नहीं आए, वो बाहर खड़ा इंतजार कर रहा था भाई आए तो हम जाएं। वो अंदर ढूंढने के लिए चला गया कि भाई बंदा किधर है, देखा तो सज्जे में, ठीक है भाई अब काफी देर तक सदे से सर ही ना उठे, फिर जाकर देखा हिलाया तो उसके इतनी रूह निकल गई थी, वो तो काबे के आगे सजदा करते हुए वो तो इंतकाल कर गया, वो तो उफ बोले ये क्या खुशकिस्मती है, यानी मुझे इसके लिए भेजा गया था कि ये वहां जाए और उसकी रूह यहां कब्ज होगी, अब दिखने को तो कुछ भी नजर नहीं आ रहा था। जब उससे मालूमात ली गई इसके इंतकाल के बाद कि भाई ये क्या ऐसा अमल करता था, तो घर से पता चला कि वाकई ये कोई ऐसा कोई नेक आदमी जिसको कहते हैं, ये ऐसा कोई आदमी तो नहीं था, बेअमल सा आदमी था, मगर ये जब भी रात घर आता ना जब भी रात घर आता तो घर के लिए खाने का सामान लाता और एक और खाने का पैकेट होता जो हमारे पड़ोस में ये दरवाजे के बाहर रखकर दरवाजा बजा देता कि और कहता इसको उठा लेना। और वो एक बेवा का घर था, जब दरवाजा खुलता वो उठा लेती, पर्दे के सारे इत्तेमाम वो करता था क्योंकि वो समझता था कि ये मतलब ये पर्दगी नहीं होनी चाहिए वगैरह, इतना समझता था ये आदमी। और वो मतलब के पर्दे के साथ सारे काम होते थे, शरी तकाजों के साथ जिसको हम कह सकते हैं। तो उसकी बीवी कहती है कि जब वो औरत खाना उठाकर घर में आती, दरवाजा बंद कर दिया, हम आवाज सुनते तो वो औरत खाना उठाकर दरवाजा बंद करके एक दुआ क्या करती थी कि या अल्लाह इसका खात्मा ईमान पर फरमाना और अच्छा खात्मा फरमाना।
अल्लाह,
मुझे लगता है उस औरत की दुआ कबूल हो गई। मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, मदनी चैनल के नाजरीन, ये भलाई के काम, ये नेकी के काम, ये मदद के काम, अब आप पहला वाक्य पर गौर करें, दूसरे वाक्य पर गौर करें, खाना देते थे, खाना खिलाते थे, गरीबों की मदद करते थे, हाजतमंदों की मदद करते थे, जरूरतमंदों की मदद करते थे और इन्हें कुछ ना कुछ पेश कर देते थे। मैं आपको चंद हदीसें सुनाता हूं। अल्लाह के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो अपने मुसलमान भाई को पेट भर कर खाना खिलाए, प्यास भर पानी पिलाए, अल्लाह पाक उसे दोजख से 7 खाइयां दूर कर दे। हर 2 खाइयों के दरमियान 500 बरस की राह हो। इतनी बड़ी फजीलत है। एक और हदीस सुनिए, जिस मुसलमान का जी किसी खाने पीने या किसी किस्म हलाल यानी हलाल किस्म चीज को चाहता हो, इत्तिफाक से दूसरा उसके लिए वही चीज मुहैया कर दे, पेश कर दे, अल्लाह पाक उसके लिए मगफिरत फरमा दे। एक और हदीस सुनिए, जो अपने मुसलमान भाई को उसकी चाहत की चीज खिलाए, अल्लाह पाक उसे दोजख पर हराम फरमा दे। एक और हदीस सुनिए, अल्लाह के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा, रहमत इलाही वाजिब कर देने वाली चीज में से गरीब मुसलमानों को खाना खिलाना है। कई हदीसें प्यारे इस्लामी भाइयों, कई हदीसें। हम बड़ा महंगाई को रो रहे हैं, महंगाई महंगाई महंगाई, हमारे चीखने चिल्लाने से बोलने से महंगाई क्या खत्म हो जाएगी? मैं अभी 2 घंटे महंगाई पर बयान कर लूं तो ऐसा है नहीं दोपहर को कोई जाएगा तो आटा सस्ता हो गया होगा, चीनी सस्ती हो गई होगी, अंडे सस्ते हो गए होंगे, डबल रोटी सस्ती हो गई होगी, तंदूर वाले ने रोटी सस्ती कर दी होगी, इसका चांस ना होने के बराबर है। अब करें क्या? 2-3 रास्ते हैं, मजदूरी बढ़ा दी जाए लोगों की, सैलरी अच्छी कर दी जाए और इस तरह गरीब लोगों की मदद की जाए। आम आदमी हमारे इर्द गिर्द, हमारे पड़ोस में, हमारे रिश्तेदारों में, हमारे खानदानों में, हमारे महलों में, हमारे शहर में मौजूद है, गरीब से गरीब सब मौजूद है, जिनके घर में एक वक्त का खाना जाता है ना, मुझे पता है, मैं पर्सनल बात कर रहा हूं, मुझे पता है, एक वक्त का खाना जाता है ना, घर में खुशी की लहर दौड़ जाती है। ऐसे घर भी है जो सिर्फ इंतजार कर रहे होते हैं कि अभी कोई खाना आएगा और बच्चे और बड़े सब मिलकर खाना खा लेंगे। ऐसे ऐसे घर हैं। हाँ जी, हमारे शहरों में घर है, मैं गांव देहातों की बात नहीं कर रहा, गरीब से गरीब इलाके दुनिया भर में। अगर मैं इस वक्त कराची शहर में मौजूद हूं और एक शहर है, बड़ा शहर है, दुनिया के चंद बड़े शहरों में से एक शहर है, कहते दुनिया का 7वां बड़ा शहर कहलाता है यह कराची, दुनिया के कई मुल्क की आबादी कराची शहर से कम है और वाकई मतलब है, और इससे बड़े बड़े शहर है हमारे मुल्क के अंदर, और इसके अलावा दुनिया भर में जाए तो बड़े बड़े मुल्क, अमीरों के मुल्क और बड़ी बड़ी सरमाएदार लोग यहां मौजूद हैं। और ऐसा नहीं कोई नहीं करता, करने वाले कर रहे होते हैं, यहां बात इंडिविजुअल की जा रही है, देखने सुनने वालों के लिए की जा रही है। आप और मैं क्या कर सकते हैं? इखलास के साथ नीयत अच्छी होनी चाहिए। और अल्लाह के प्यारे हबीब हबीब लबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुखियारी उम्मत कि खिदमत का जज्बा दिल में लेकर अल्लाह की रिजा के साए में बंदा काम करे और अपनी हलाल रोजी से काम करे, थोड़ा दे, अल्लाह पाक के पाक माल कबूल फरमाता है अच्छी नीयतों के साथ। ऐसे दे के जिंदगी भर पता ना चले यार, इखलास के साथ दे। मेरे आका हजरत इमाम जैनुल आबिदीन रदी अल्लाह तआला अन्हु इनके इंतकाल फरमाने के बाद पता चला कि ये खुद कितने घरों की मदद क्या करते थे, नहीं बताने, किसी को नहीं बताया। ऐसे भी तो लोग हैं, और आज भी ऐसे मिलेंगे। जमीन ऐसे लोगों से खाली नहीं है, मगर कम है। और हम अगर अपने बारे में गौर करें, जो महीने के 2,000, 2,500, 3,000, 4,000, 5,000 एफोर्ड कर सकते हैं। हम एक होटल का खाना लेने के लिए जाते हैं, आम लोगों की, मैं मिडिल क्लास की बात करूं या थोड़े से ऊपर की बात करूं, तो आम होटल से खाना लेने के लिए जाते हैं तो जना 4-5 हज़ार रुपए का तो बिल बन जाता है, नॉर्मल पे 4-5 हज़ार रुपए का बिल बन जाता है। अगर इस तरह 4-4, 5-5 हज़ार रुपए का बिल एक एक फैमिली अपनी बचाकर उन गरीबों की तरफ, मदद की तरफ हाथ बढ़ाए, मैं ज़कात की इस वक्त बात नहीं कर रहा आपसे, ऐसे कई सैलरी पर्सन है, मैं आम लोगों की बस सैलरी पर्सन है, इनको प्रोजेक्ट वाइज 10-10, 20-20 लाख रुपए एक एक प्रोजेक्ट के मिलते हैं। जी हाँ, 1.5 महीने का 2 महीने का प्रोजेक्ट होता है। ऐसे कई सॉफ्टवेयर इंजीनियर है और कई प्रोफेशनल्स हैं। मेरी बात को कोई इंशाल्लाह ताला डिनाई नहीं करेगा, इनकी स्किल्स ऐसी है, इन्हें मिल रहा होता है। अगर इसमें से भी ये चंद गरीब फैमिलीज को देख लें, मुस्तकी को देख लें और इनकी खिदमत करें, और उसमें भी अगर सैयदों के घराने मिल जाए तो भी क्या बात है। तो हम इस अंदाज पर भी ये महंगाई से बचने का, यानी जो एक परेशानी है हमारी सोसाइटी को, हमारे माशरे को, मैं इससे बचने के कुछ एक दो चीजें अर्ज कर रहा हूं, ज्यादा क्या अर्ज कर सकता हूं। कि इस तरह मतलब के जो मुलाजिमीन है इनकी सैलरीज अच्छी की जाए, कोशिश करें तो इंशाल्लाह हो सकता है। अब साल के आखिर में देखा जनाब, 20-25 करोड़ रुपया हमारे बचे हुए हैं, 1-2 अरब रुपया साल के आखिर में बचा हुआ है। आपने इसके लिए अपने मजीद प्रोजेक्ट्स ऑन कर दिए, ये कर दिए, वो कर दिए। अगर इसी को गौर कर लें कि इसका 1% सैलरी बढ़ा दें आम आदमी की, आपकी वेल्थ में कोई इतना ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, आपकी फाइनेंशियली स्ट्रेंथ में कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, नथिंग। बल्कि हो सकता है कि ये सैलरी अच्छी करने की वजह से इन गरीबों और मिडिल क्लास अफराद की फैमिलीज को खुशहाल करने की वजह से इतनी दुआएं मिलें कि आपकी दुनिया और आखरत की कितनी मुश्किलें आसान हो जाएं। हदीस में दिन खैरखाई का नाम है, हमें भलाई करनी चाहिए। और आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुखियारी उम्मत की खिदमत का दर्द हमारे अंदर होना चाहिए। अल्हम्दुलिल्लाह दावत इस्लामी FGRF के जरिए कर रही है, जो दावत इस्लामी के जिम्मेदारान कर सकते हैं, अल्लाह का शुक्र है। और जाहिर है कि लोग दे रहे होते हो कर रहे हैं, और देना ही चाहिए, रोकना नहीं चाहिए हाथ। हम जहां थोड़ी सी कारोबार में तंगी आती है तो हम अल्लाह की राह में देना कम कर देते हैं। अरे भाई, अल्लाह की राह में बढ़ा दो और खर्चे कम कर दो, यहां तो अल्लाह की राह में बढ़ाओ कि जितने राह खुदा में खर्च करोगे अल्लाह ताला तुम्हें और बढ़ा कर देगा। अल्लाह पाक हम सबको आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की दुखियारी उम्मत की खिदमत का जज्बा अता फरमाए, और हम इनकी खिदमत करें, इनकी मदद करें, इनके काम आए, बस इखलास के साथ करें। किसी को जताना नहीं है, किसी को बताना नहीं है, डंका नहीं बजाना होता। हजरत अब्दुल्लाह इब्ने मुबारक रहमतुल्लाह ताला अलैह, ये बहुत जबरदस्त अल्लाह के वली गुजरे हैं। ये सफर किया करते थे तो एक शहर में इनका कयाम होता था, रुकते थे कुछ देर के लिए। वहां एक नौजवान आपकी बड़ी खिदमत किया करता था। एक मरतबा आप तशरीफ ले गए तो नौजवान तो मिला नहीं। आपने नौजवान के बारे में मालूम दी कि भाई क्या बात है, नौजवान आया नहीं है। तो बताया कि उस नौजवान को तो जेल में डाल दिया है। जेल में डाल दिया, खैरियत? क्या उसने किसी से कर्जा लिया था, कर्जा वक्त पर अदा नहीं किया, उसने काजी के पास मुकदमा कर दिया, काजी ने उसको जेल कर दी, सजा में वो अंदर है, बंद है। तो अब्दुल्लाह इब्ने मुबारक रहमतुल्लाह ताला अलैह को ऐसा हुआ कि हमारी खिदमत करता था, हमारे साथ अच्छा इसका सलूक था, मुझे इसकी मदद करनी चाहिए। जिससे कर्ज लिया था उस नौजवान ने, हजरत सैयद अब्दुल्लाह इब्ने मुबारक अलैह रहमान उसे राबता किया और उससे बातचीत की, तो कहा कि मेरा इतना कर्जा है, मेरे पैसे वापस मिल जाए, मुझे उसको बंद कराने में थोड़ी को खुशी हो रही है। तो आपने फरमाया तुमको रकम मिल जाए तो वो छूट जाएगा। बिल्कुल छूट जाएगा, मैं अपना मुकदमा वापस ले लूंगा, मुझे मेरी रकम मिल गई। आपने उसके रकम पूछी तो कुछ हजार दिरहम दिनार कुछ पैसे थे। तो आपने फरमाया कि ये रकम लो, मगर मेरी एक गुजारिश है। उस नौजवान को आप ये नहीं बताओगे कि ये रकम किसने दी थी। क्या ठीक है, मुझे क्या जरूरत है बताने की, मेरी रकम मुझे मिल गई, मेरा काम हो गया। आपने रकम दी और अगले शहर जहां जाना होता था वहां पर चले गए। वापसी अब अपने शहर पहुंचे, हुआ यह कि उस नौजवान ने बाहर निकल के जब उसे पता चला कि हजरत तशरीफ लाए थे, तो उसको ऐसा हुआ कि हजरत ने तो मुझे ढूंढा होगा, मैं तो मिला नहीं। तो अब हजरत को तश्वीश हुई होगी, तो वो हजरत से मिलने के लिए हजरत के शहर चला गया नौजवान, कि चले हजरत अब्दुल्ला इब्ने मुबारक रहमतुल्लाह ताला अलैह की ज्यारत कर लूं, शहर में आए थे मैं, मुलाकात नहीं हुई, उनको तश्वीश हुई होगी। जैसे ही वो नौजवान को हजरत अब्दुल्ला इब्ने मुबारक अलैह रहमान ने देखा, तो आपको ऐसा हुआ कि लगता है इसको पता चल गया, ये शुक्रिया अदा करने के लिए आया है। तो वो जैसे ही करीब आए तो कहा कि हजरत आप हमारे शहर आए थे, कहा मैं आया तो था मगर आप थे नहीं। तो उसने सारा वाकया सुना कि मेरे साथ यूं ही हो गया था, मैं कैद में चला गया था वगैरह वगैरह, एक किसी भले आदमी ने मेरा कर्जा उतार दिया और मेरी ये सजा माफ हो गई, और मुझे पता भी नहीं है हुजूर वो भला आदमी कौन है। हजरत अब्दुल्ला इब्ने मुबारक अलैहि रहमा सामने बैठे हुए, फरमा भी नहीं रहे कि बेटा वो भला आदमी मैं ही हूं, नहीं, आपने कहा कि चलो कोई नहीं, आपको नहीं पता, उसको दुआ दे दो, अल्लाह उसको जजाए खैर दे। क्या हुजूर दुआ तो मैंने दे दी, अल्लाह उसको जजाए खैर दे। आखिर तक हजरत अब्दुल्ला इब्ने मुबारक रहमतुल्लाह ताला अलैह ने उस नौजवान को ये नहीं बताया कि भाई आपकी मदद मैंने की थी। ऐसे ऐसे अल्लाह ताला के नेक बंदे बुजुर्ग गुजरे, तो अल्लाह हमें इखलास नसीब फरमाए, और बस मेरा हर अमल बस तेरे वास्ते हो। मेरे शेख तरीकत ने अल्लाह को हुजूर दुआ की है, मेरा हर अमल बस तेरे वास्ते हो, कर इखलास ऐसा आता या इलाही। अल्लाह अमल करने की तौफीक अता फरमाए। सल्लू अलल हबीब।
मैं मुबल्लिग बनूं सुन्नतों का, खूब चर्चा करूं